ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने महिलाओं की प्रगति में सहयोगी अवसर सृजित करने में समाज की भूमिका पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत पर एक दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त महिलाओं के बल पर ही किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है कि देश की महिलाएं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हों और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के नौसारी जिले में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। श्री मोदी ने 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर महिलाओं की गरिमा और कल्याण को सर्वोच्च महत्व दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि 2015 के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली मॉरिशस यात्रा है। उन्होंने कहा कि भारत के मॉरिशस के साथ सदियों से साझा इतिहास, संस्कृति और परस्पर जन संपर्क के आधार पर घनिष्ठ संबंध रहे हैं। श्री मिश्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं और इस यात्रा से दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की एक मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज सुबह नागपुर के मिहान इलाके में विशेष आर्थिक क्षेत्र में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन करेंगे। पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण के अनुसार ये फूड एंड हर्बल पार्क पतंजलि द्वारा स्थापित एशिया का सबसे बड़ा संतरा प्रसंस्करण संयंत्र होगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र को इस स्तर पर पहुंचने की जरूरत है जहां नई प्रौद्योगिकी का विकास भारत में हो और अन्य देश इसका अनुसरण करे। कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि मौजूदा संघर्षों से एक सबक ये मिलता है कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। सीरिया में तटीय लताकिया क्षेत्र में सेना और अपदस्थ नेता बशर अल असद के सशस्त्र समर्थकों के बीच संघर्ष में मृतकों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। ब्रिटेन में मानव अधिकारों की संस्था के अनुसार संघर्ष में अब तक लगभग 120 विद्रोही और 93 सैनिक मारे जा चुके हैं। 330 नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि सीरिया के अधिकारियों ने मृतकों की संख्या की जानकारी नहीं दी है। इस्लामी देशों के संगठन ओआईईसी में सीरिया को दोबारा सदस्य बनाया गया है। ओआईईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद ने 12 साल के निलंबन को समाप्त करते हुए सदस्यता बहाली का फैसला किया। ये कदम सीरिया द्वारा बहाली के लिए औपचारिक अनुरोध के बाद उठाया गया है। 2012 में बशर अल असद शासन के दौरान बढ़ती हिंसा के कारण ओआईईसी ने सीरिया की सदस्यता निलंबित कर दी थी। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों द्वारा प्रस्तावित योजना का समर्थन किया है। 53 अरब US डॉलर की इस योजना का उद्देश्य फलस्तीनियों को विस्थापित किए बिना क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में आज दोपहर 2:30 बजे से भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। आज होने वाला फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है जिसमें भारत की मजबूत बल्लेबाजी का सामना न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।